मैं सचिन कुमार नागरिकता अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। नागरिकता नागरिकता का अर्थ किसी भी राज्य की जनसंख्या को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, नागरिक और अन्य देशीय। नागरिकों को सभी सिविल और राजनैतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, किंतु अन्य देशियों को ये सब अधिकार नहीं मिलते। नागरिक अपने राजनैतिक समूह के सदस्य होते हैं, यही मिलकर राज्य का गठन करते हैं। भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार और विशेषाधिकार। संविधान के निर्माण के समय नागरिकता का प्रश्न विशेष महत्व का हो गया, क्योंकि संविधान उन लोगों को जो भारत के नागरिक होने के हकदार थे कुछ विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करना चाहता था। अन्य देशीय इस प्रकार के अधिकार से वंचित रखे जाने वाले थे। अन्य देशियों को कुछ निर्योग्यता के अधीन भी रखा गया। भारत के नागरिकों को संविधान के अधीन निम्नलिखित अधिकार हैं जो अन्य देशियों को नहीं हैं। प्रथम, कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को ही दिए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16 और 19। द्वितीय, केवल नागरिक ही कुछ पदों के पात्र हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 58(1), उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 66(3)(क), उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अनुच्छेद 124(3), उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अनुच्छेद 217(2), महान्यायवादी अनुच्छेद 76(2), राज्यपाल अनुच्छेद 157, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। तृतीय, लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मत देने का अधिकार अनुच्छेद 326 और संसद का सदस्य होने का अधिकार अनुच्छेद 84 तथा राज्य के विधानमंडल का सदस्य होने का अधिकार अनुच्छेद 191(1)(घ) केवल नागरिकों तक सीमित हैं। ये अधिकार अन्य देशीय लोगों को नहीं दिए जाते हैं, चाहे वे मित्र हों या शत्रु। शत्रु अन्य देशियों की कुछ विशेषताएँ निर्योग्यताएँ होती हैं, उन्हें अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित प्रक्रियात्मक उपबंधों का फायदा नहीं मिलता है। अन्य देशीय शत्रु में केवल वे ही लोग नहीं आते जो ऐसे राज्य की प्रजा हैं जिसके साथ भारत युद्ध कर रहा है, बल्कि ऐसे भारतीय नागरिक भी आते हैं जो ऐसे राज्य में स्वेच्छा से निवास कर रहे हैं या उनके साथ व्यापार कर रहे हैं। भारत में नागरिकता का संवैधानिक और कानूनी आधार। संविधान में भारत की नागरिकता के संबंध में अस्थायी या व्यापक विधि अधिकथित करने का कोई आशय नहीं था। उसमें केवल व्यक्ति के उन वर्गों का वर्णन किया गया है जिन्हें भारत के संविधान के प्रारंभ की तारीख को भारत का नागरिक समझा जाएगा। संविधान ने भविष्य में संसद द्वारा बनाई जाने वाली विधि द्वारा समस्त नागरिकता को विधि को विनियमित किए जाने के लिए छोड़ दिया। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। इस अधिनियम में संविधान के प्रारंभ के पश्चात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध रखा गया। इस अधिनियम के उपबंध संविधान के भाग दो के उपबंध के साथ पढ़े जाने चाहिए, तभी भारत की नागरिकता की विधि का समग्र चित्र प्राप्त होगा। संसद के अधिनियम में संविधान के प्रारंभ के पश्चात नागरिकता के अर्जन के तरीके बताए गए हैं, इसलिए इन पर अलग अलग विचार करना सुविधाजनक होगा। वे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को नागरिक हो गए। संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 के अधीन निम्नलिखित व्यक्ति संविधान के प्रारंभ पर भारत के नागरिक बन गए। 1, कोई व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है, चाहे उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, अनुच्छेद 5(क)। द्वितीय, भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासी कोई व्यक्ति जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, उसके माता पिता की राष्ट्रीयता चाहे कुछ भी रही हो, अथवा ऐसे व्यक्ति का जन्म का स्थान कुछ भी हो, अनुच्छेद 5(ख)। तृतीय, कोई व्यक्ति जिसका या जिसके माता पिता का जन्म भारत में नहीं हुआ था, किंतु जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासी और संविधान के प्रारंभ से ठीक पूर्ववर्ती 5 वर्ष की अवधि के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी था, इस दशा में भी ऐसे व्यक्ति के माता या पिता की राष्ट्रीयता तात्विक नहीं है। उदाहरण के लिए, किसी पुर्तगाली बस्ती की कोई प्रजा यदि संविधान के प्रारंभ के ठीक पूर्ववर्ती 5 वर्ष से अन्यून अवधि के लिए भारत में निवास करती है और उसका भारत में अस्थायी रूप से निवास करने का आशय है, तो वह संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक हो जाएगा, अनुच्छेद 5(ग)। चतुर्थ, पाकिस्तान से भारत को आवर्जन करने वाला व्यक्ति, परंतु यह तब जबकि यदि वह या उसके माता पिता में से कोई एक अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और उसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार आवर्जन किया था, उसने ऐसे आवर्जन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर मामूली तौर से निवास किया है, उसकी दशा में नागरिकता के लिए आवर्जक के रूप में रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं है, या यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार आवर्जन किया था और फिर संविधान के प्रारंभ के पहले भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए ऐसे अधिकारी को जिसे भारत सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है आवेदन किया था, और ऐसे अधिकारी ने उसका यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक ऐसे आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 मास तक भारत के राज्य क्षेत्र का निवासी रहा है उसे रजिस्ट्रीकृत किया है, अनुच्छेद 6। पंचम, कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान को आवर्जन किया है किंतु उसके पश्चात किसी अनुज्ञा के अधीन भारत लौट आया है, यह अनुज्ञा पुनर्वास के लिए या अस्थायी रूप से लौटने के लिए विधि के किसी प्राधिकार के अधीन दी गई है, परंतु यह तब जबकि वह अनुच्छेद 6(ख)(2) के अधीन बताई गई रीति में अपने आप को रजिस्ट्रीकृत करा लेता है। अनुच्छेद 7। षष्ठ, कोई व्यक्ति जो या जिसके मातामह या मातामही या पितामह या पितामही में से कोई मूल रूप से या यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था किंतु जो भारत से बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है चाहे संविधान के प्रारंभ के पहले हो या उसके पश्चात विहित रूप में अपने निवास के देश में भारत के कौंसलीय या राजनयिक प्रतिनिधि को आवेदन करने पर भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा, अनुच्छेद 8। इस प्रकार संविधान के प्रारंभ की तारीख को विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए यह उपबंध किया गया। 26 जनवरी 1950 के पश्चात नागरिकता का अर्जन। नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा विहित नागरिकता के अर्जन के विभिन्न ढंग इस प्रकार हैं। जन्म से नागरिकता, प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 26/1/1950 को या उसके पश्चात हुआ है जन्म से भारत का नागरिक होगा। ख, अवजनन द्वारा नागरिकता, स्थूल रूप से 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत के बाहर पैदा हुआ कोई व्यक्ति अवजनन द्वारा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता या पिता में से कोई उसके जन्म के समय भारत का नागरिक है। ग, रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता, अन्य वर्गों के व्यक्ति जिन्हें अन्यथा भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हुई है विहित प्राधिकारी के समक्ष इस निमित्त अपने को रजिस्ट्रीकृत करके भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकेंगे, अर्थात भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो मामूली तौर पर भारत में निवासी हैं और जो रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के ठीक पहले 5 वर्ष की अवधि तक इस प्रकार निवासी रहे हैं, वे स्त्रियां जिनका विवाह भारत के किसी नागरिक के साथ हुआ है। घ, देशीयकरण द्वारा नागरिकता, कोई विदेशी भारत सरकार के देशीयकरण के लिए आवेदन करके भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकेगा। अंग, राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता, यदि कोई अन्य राज्य क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो भारत से सरकार यह निर्दिष्ट करेगी कि उस राज्य क्षेत्र के व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। भारतीय नागरिकता का पर्यवसन, नागरिकता अधिनियम 1955 में यह भी अधिकथित है कि संविधान के उपबंधों के अधीन किसी प्रकार किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी चाहे वह नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन अर्जित की गई हो या उसके पूर्व। यह 3 प्रकार की हो सकती है, त्यागने पर, पर्यवसान पर और वंचित किए जाने पर। त्यागना एक स्वैच्छिक क्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति जो भारत की और किसी देश की नागरिकता धारण करता है उनमें से किसी एक को छोड़ सकता है। पर्यवसान, पर्यवसान विधि के द्वारा होता है, जैसे ही कोई व्यक्ति भारत के नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है वैसे ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। वंचित किया जाना, वंचित किया जाना भारत की नागरिकता का भारत से बाहर के देश द्वारा अनिवार्य पर्यवसान है। यदि भारत सरकार का कुछ बातों के बारे में यह समाधान हो जाता है कि भारत नागरिकता किसी व्यक्ति द्वारा कपट द्वारा अर्जित की गई थी या उसने अपने आप को भारत के संविधान के प्रति अभक्त या अप्रीतिपूर्ण प्रदर्शित किया है तो वह ऐसा कर सकती है। भारत में इकहड़ी नागरिकता, इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि हमारा संविधान परिसंघीय है फिर भी इसमें केवल एक ही नागरिकता की व्यवस्था है अर्थात भारत की नागरिकता। अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे परिसंघीय राज्यों में दोहरी नागरिकता है अर्थात परिसंघ की या राष्ट्रीय नागरिकता और उस राज्य की नागरिकता जहाँ उस व्यक्ति का जन्म हुआ है जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है। इन 2 प्रकार की नागरिकताओं से विभिन्न अधिकार और बाध्यताएँ उत्पन्न होती है। भारत में किसी राज्य में जन्मे या अनिवासी व्यक्ति की केवल एक ही नागरिकता होती है अर्थात भारत की नागरिकता और संविधान द्वारा प्रदत्त सिविल और राजनीतिक अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से उपलब्ध हैं चाहे उसका जन्म स्थान और निवास स्थान भारत के किसी भी भाग में हो। किसी राज्य में स्थायी निवास से कुछ विषयों में कुछ लाभ प्राप्त हो सकते हैं जिन्हें इस संदर्भ में देखना उचित होगा। क, संघ के अधीन नियोजन के संबंध में किसी विशेष राज्य क्षेत्र में निवास की कोई अर्हता नहीं होगी, किंतु संविधान के अनुच्छेद 16(3) में यह अधिकथित है कि संसद को यह शक्ति है कि वह किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन किसी वर्ग या वर्गों के नियोजन के लिए यह अधिकथित करे कि उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास करना आवश्यक अर्हता होगी। राज्य में नियोजन की दशा में अपवाद इसलिए रखा गया है जिससे कार्य में दक्षता हो, क्योंकि स्थानीय परिस्थितियों से परिचय पर कुछ कार्य आधारित होते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि इस विषय में विधान बनाने का एकमात्र प्राधिकार संसद को है, राज्य के विधानमंडलों को कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार विभिन्न राज्यों के बीच अन्यायपूर्ण विभेद नहीं हो पाएगा। संसद ने इस शक्ति के प्रयोग में लोक नियोजन निवास की अपेक्षा अधिनियम 1957 समिति सीमित अवधि के लिए अधिनियमित किया था। इस अधिनियम द्वारा संसद ने केंद्रीय सरकार को आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में अराजपत्रित पदों में नियुक्ति के लिए निवास की अपेक्षाएं विहित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी थी। ये नियम विनिर्दिष्ट अवधि तक प्रवृत्त रहने वाले थे। 1974 में इस अधिनियम की समाप्ति के पश्चात किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य में इस आधार पर नियोजन से वंचित नहीं किया जा सकता कि वह उस राज्य का निवासी नहीं है। ख, जैसा हम आगे मूल अधिकार के अध्याय में देखेंगे, अनुच्छेद 15(1) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इसमें निवास का उल्लेख नहीं है। अतएव संविधान द्वारा राज्य को यह अनुमति है कि वह उन भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों से भिन्न विषयों में अपने निवासियों को विशेष फायदे दे सकता है। दृष्टांत के लिए राज्य की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए फीस उद्ग्रहण का मामला है। उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 15 में निवास के आधार पर विभेद का प्रतिषेध नहीं है, इसलिए राज्य अपने राज्य में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में प्रवेश की फीस के विषय में अपने निवासियों को रियायत दे सकता है। ग, जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्नलिखित विषय की बाबत अपने राज्य में स्थायी रूप से निवासी व्यक्तियों को विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। प्रथम, राज्य सरकार के अधीन नियोजन। द्वितीय, राज्य में स्थावर संपत्ति का अर्जन। तृतीय, राज्य में बस जाने। या चतुर्थ, छात्रवृत्तियों या ऐसी अन्य प्रकार की सहायता के अधिकार जो राज्य सरकार प्रदान करे। अध्याय समाप्त।